بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 7 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب دجال 2 عالمی دجالی ریاست ابتدا سے انتہا تک ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف مفتی ابو لبابہ شاہ منصور ہیں۔ یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225۔ ہم نے اس کے سوالات کے جوابات بھی دیے اور ساتھ میں ہم نے بھی اس سے کچھ باتیں پوچھی۔ اس کو یہ بھی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق پیشن گوئیاں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن وہ اس سے انکار کرتی۔ ہم لوگوں نے آپس میں بہت بحث کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ بحث لا حاصل ہے اور اس سے تبلیغ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو ہم نے اس سے دین کے بارے میں بات کافی حد تک کم کر دی۔ ہم خود بھی اس کو اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ویسے اگر اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے، لیکن وہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہے۔ وہ فرقے کے لحاظ سے پروٹیسٹنٹ ہے۔ پلیز آپ ہمیں پہلے یہ ضرور بتائیں کہ ہم اس کو اللہ کی وحدانیت اور اسلام کے حق ہونے کا یقین کیسے دلائیں۔ سوال نمبر 5، ہمارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت پی ٹی یعنی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ پی ٹی بغیر میوزک کے ہوتی تھی، لیکن 1-2 سال پہلے پی ٹی ایک انگریزی گانے پر شروع کرا دی گئی، اور پی ٹی بھی پہلے سے مختلف ہو گئی جو کہ ڈانس سے مشابہت رکھتی تھی۔ ہم لوگ پہلے تو یہ پی ٹی کرتے رہے، لیکن جبکہ ہمارے ذہن دین کی طرف تھوڑا مائل ہوئے تو ہم نے سوچا اس طرح کی پی ٹی کرنا بھی ایک گناہ ہی ہے۔ ہم مسلمان دوستوں سے پہلے اسی عیسائی لڑکی نے یہ پی ٹی کرنا چھوڑ دی تو ہمیں بھی حوصلہ ملا، ہم نے بھی چھوڑ دی۔ جب چند ٹیچرز نے یہ دیکھا اور ہم سے دریافت کیا کہ ہم پی ٹی کیوں نہیں کرتے، تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ پی ٹی نہیں بلکہ ڈانس ہے اور ہمیں اس طرح کی پی ٹی پسند نہیں۔ ہم نے پرنسپل سے بھی بات کی تو وہ ہمیں سمجھاتی رہی کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، انسان کو اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اس کے بعد جب ہماری اسلامیات کی ٹیچر نے بھی ہم سے پی ٹی کرنے کو کہا تو ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ ہم نے اسلامیات کی ٹیچر سے اس موضوع پر بات کی کہ یہ پی ٹی نہیں بلکہ ڈانس ہے اور وہ بھی میوزک کے ساتھ۔ تو مس نے کہا یہ اسکول کے اصولوں میں شامل ہے اور آپ کو یہ ضرور کرنی پڑے گی۔ مس نے مزید کہا اسلام اتنی پابندیاں نہیں لگاتا، اور میوزک کے بارے میں اسلامیات کی استانی نے کہا آپ خود دیکھیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر اور گیت گا کر ان کا استقبال کیا۔ یہ بات سن کر پہلے تو ہم اپنے ذہنوں پر زور ڈالتے رہے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر کب دف بجایا گیا تھا۔ جب ہم نے مس کو اصل واقعہ اور میوزک کی ممانعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہماری بات ماننے سے ہی انکار کر دیا اور مزید کہا ڈھول کا جو مٹیریل ہے وہی دف والا مٹیریل جیسا ہے۔ مس نے یہ بھی کہا پی ٹی وغیرہ کرنے سے آپ لوگ عیسائی نہیں ہو جائیں گی۔ مذہب تو دل کے اندر ہوتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر، کافی دیر بحث کے بعد مس نے ہماری بات ماننے سے انکار کر دیا اور ہم دوستوں کو نا فرما بردار کا خطاب دے دیا گیا، کیونکہ مس کے کہنے کے مطابق سب مسلمان لڑکیاں تو یہ کرتی ہیں، لیکن ہم نے یہ پی ٹی نہ کر کے ٹیچرز کا حکم نہیں مانا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ہم ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ کیا واقعی ہم یہ سب نہ کر کے اپنے اساتذہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خط لکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا بڑا اور ہمدرد سمجھ کر آپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر میں یہ کہیں گے کہ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے گا۔ والسلام، कुछ परेशान मुसलमान बच्चियां। सबसे पहले तो मुझे इस बात के इजहार की इजाजत दीजिए कि आप और आपकी सालेहात मोमिनात साथियों का खत मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत और मुसर्रत का बायस बना। एक ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां अपने दीन से इस कदर गहरा ताल्लुक, उसकी दुरुस्त मालूमात का इतना शौक, उसके तमाम अहकामात पर अमल का इस कदर जज्बा और उसके बारे में शऊर व वाकफियत और आगही हासिल करने के लिए इतनी कोशिश कर सकती हैं, ये बात मेरे लिए इस कदर खुशी और इत्मीनान का बायस है कि मैं इसके इजहार पर मजबूर हूँ। आप जिस माहौल में जेर तालीम हैं वहाँ अपने किरदार, अपने नशिस्त व बर्खास्त और सही इस्लामी तहजीबी और इखलाकी तस्वीर पेश करके जिस कदर तबलीग कर सकती हैं शायद किसी और जरिए से मुमकिन ना हो। आप खुद एक रोल मॉडल होंगी, आपके एक्शन ही तबलीग का सबसे मौसर जरिया है। आपने मशहूर मुहावरा सुन रखा होगा, अमल अल्फाज से ज्यादा बुलंद आहंग होता है। जब आप दीन की हर हर चीज पर अमल पैरा होंगी तो ये चीज दूसरों के लिए अव्वलन तो बायस तजस्सुस होगी और यही तजस्सुस उनको आपके करीब लाएगा। सवालात की सूरत में फिर आपको भरपूर तबलीग का मौका मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके खत की सतर सतर से जिन दीनी जज्बात और मजहबी गैरत व हमीयत का इजहार हो रहा है, इस नेमत उज़्मा पर आप अल्लाह का जिस कदर शुक्र अदा करें कम है। ये इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई की दलील है कि मिशनरी इदारे जो ईसाइत की तरवीज और फरोग के लिए बनाए गए हैं, वहाँ आप जैसी नेक सालेहात पहुंचकर उनके वसाइल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आपको इल्म होगा कि मैं अपने नाम आने वाली बेशुमार डाक में से कुछ का जवाब तहरीर कर पाता हूँगा, मगर आपके खत ने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपका मददगार हो और आपकी ताईद व नुसरत के गैबी असबाब मुहैया फरमाए। अब आप अपने सवालात का जवाब सुन लें। जवाब नंबर एक, इसका जिक्र अहादीस में नहीं, अलबत्ता शिद्दत पसंद यहूदी रहनुमाओं ने अपनी कौम को ये बावर कराने कराया है कि ऐसा किए बगैर मसीहा नहीं आएगा, जबकि ये ऐसी फजूल बात है कि اعتدال पसंद यहूदी भी उसे नहीं मानते। उनका कहना है कि मसीहा जब आएगा तब वो हमें जिल्लत से निजात दिलाएगा, इसराइली रियासत कायम करेगा और हैकल तामीर करेगा। हमें उसके आने से पहले फलस्तीन के बाशिंदों पर इतना जुल्म करने की क्या जरूरत है? लेकिन शिद्दत पसंद यहूदी ना तौरात की पेशनगोयां मानने पर तैयार हैं, ना अपने ही कौम के मोतदिल मिजाज लोगों की बात सुनने पर। अल्लाह का फजल है कि उनका मुकाबला फलस्तीनी मुसलमानों जैसे खरे मुजाहिदीन से है, जो इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद हजरत ईसा अलैहि सलाम के नुजूल तक यहूदियों के खिलाफ डटे रहेंगे और इसराइलियों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। उनके कुर्बानियों की बदौलत मस्जिद अक्सा कायम दायम रहेगी और खुश नसीब मुजाहिदीन मुसलमान मुश्किल तरीन हालात में भी यहूद के सारे मंसूबों को नाकाम बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। जवाब नंबर दो, मजमून में बात कुछ मुबहिम रह गई है। इसका पस मंजर कुछ यूं है कि हजरत दानियाल अलैहि सलाम ने नफरत की रियासत यानी इसराइल के कयाम की तारीख बताते हुए फरमाया था, फिर मैंने दो मुकद्दस गैबी आवाजों को ये कहते सुना, ये मामला कब तक किसी तरह चलेगा कि मेजबान और मुकद्दस मुकाम को कदमों तले रौंद दिया जाए? इस पर दूसरी आवाज ने जवाब दिया, 2300 दिनों तक के लिए, फिर मुकद्दस मकाम पाक साफ कर दिया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि नफरत की रियासत 2300 दिनों बाद कायम होगी। दानियाल आयत नंबर 14-13, एक पेशन गोई में है कि ये 45 दिनों बाद खत्म हो जाएगी। अब इन 2300 साल का आगाज कब से होगा और ये 45 दिनों में कैसे खत्म होगी? शारहीन के मुताबिक इन 2300 साल का आगाज यूनानी बादशाह इस्कंदर यानी अलेक्जेंडर के एशिया यानी ईरान पर हमला होने से है। ये हमला 333 कबले मसीह में हुआ। इसको 2300 साल 1967 में पूरे होंगे। 1967 2300 से से माइनस कीजिए 333, जवाब आएगा 1967। इसराइल अगरचे कायम 1948 में हुआ, लेकिन उसने अलकुद्स पर कब्जा 1967 में किया। 1967 के 45 साल बाद तौरात की एक आयत के मुताबिक कलाम इलाही में दिन से मुराद साल होते हैं, यानी 2012 में इसराइली रियासत का खात्मा या खात्मे का आगाज हो जाएगा। इसकी तफसील डॉक्टर अब्दुल रहमान अल हवाली की किताब योमुल गज़ब तर्जुमा रज़ीउद्दीन सैयद में देखी जा सकती है। जवाब नंबर 3, यूं लगता है कि यहूद की इस मदाखलत और कायनात की तस्खीर की फजूल कोशिशों से दो असरात रोनुमा होंगे। नंबर 1, जमीन की गर्दिश में गड़बड़ से दिन रात के बनने में 3 दिन के लिए फर्क आ जाएगा। यही दिन एक साल, दूसरा एक महीने और तीसरा हफ्ते हो जाएगा। यह दज्जाल के खुरूज का वक्त होगा। नंबर 2, जमीन की महवरी गर्दिश रुक जाएगी और फिर मुतजाद सिमत में घूमेगी। ऐसा एक दिन के लिए होगा, फिर इसके बाद ये गर्दिश मामूल के मुताबिक हो जाएगी। ये दज्जाल की हलाकत के बाद कुर्बे कयामत में होगा और इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये दो अलग अलग वाकयात हैं जिनके मुमकिन साइंसी वजूह आलमी सतह पर किए जाने वाले वो तजुर्बात हैं जो यहूदी सरमाए के बलबूते पर पूरी दुनिया के साइंसदान यहूदी साइंसदानों की सरबराही में कर रहे हैं। ये उन उलूम की रोशनी में एक इम्कानी तौजीह है जब तक आज की दुनिया नहीं पहुंच सकी। कोई हतमी तहकीकी या आखिरी राय नहीं। हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। मौलाना इस्माइल रेहान साहब ने भी बंदे से ये सवाल किया था, इसलिए बंदा इसकी कुछ मजीद तशरीह जरूरी समझता है। पहले तो ये मलहूज रहे कि हर चीज का असल सबब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। जाहिरी सबब कोई भी चीज हो सकती है। दज्जाल के खुरूज से पहले जमीन की गर्दिश थम कर 3 दिन के लिए सुस्त हो जाएगी। पहला दिन साल, दूसरा महीने और तीसरा हफ्ते के बराबर हो जाएगा। दज्जाल के खात्मे के बाद कयामत के करीब जमीन की गर्दिश जरा देर को रुक कर फिर मुखालिफ सिमत में शुरू हो जाएगी। एक दिन के लिए सूरज मगरिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसके बाद वो मामूल के मुताबिक फिर मशरिक से तुलू होगा। इन दो वाकयात का हकीकी सबब तो खालिक के कायनात का अम्र होगा। जाहिरी सबब यहूदी साइंसदानों की सरबराही में तस्खीर कायनात के लिए किए जाने वाले वो तजुर्बात हैं जो फितरी निज़ाम में मदाखलत करके उसे अपने ताबे बनाने के लिए किए जा रहे हैं। कोई बहीद नहीं कि खुरूज दज्जाल से पहले जमीन का थम जाना उनका एक फौरी असर हो और हलाकत दज्जाल के बाद जमीन का उल्टी सिमत गर्दिश करना उनका दूसरा असर हो जो जरा देर से जाहिर हो। वल्ला आलम बिस्सवाब। इस मजमून में जो कुछ लिखा गया ये महज इम्कानी तौजीह है, नाकिस समझ कर नाकिस इजहार है। हकीकत अल्लाह ताला जानता है। हमारा मकसद सिर्फ तस्कीर है, यानी बिरादरान इस्लाम को अलामात कयामत के तस्करे के जरिए कयामत की याद दिलाना और आखिरत की तैयारी की तरगीब देना। आपका शुक्रिया कि आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई। जवाब नंबर 4, हाँ, दुनिया में जितने भी कुरान करीम हैं वो सहाबा के हाथों के लिखे हुए नुस्खे की कॉपी हैं और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम का लिखा हुआ नुस्खा इस्तंबुल तुर्की के म्यूजियम तो कापे में महफूज है। ईसाइयों की बदकिस्मती है कि इंजील का एक भी नुस्खा असल अबरानी जबान में महफूज नहीं, खुद अबरानी जबान ही महफूज नहीं। हजरत ईसा अलैहि सलाम का लिखवाया हुआ तो रहने ही दें, लेकिन मुसलमानों से वो ये फजूल सवाल करते रहते हैं जो आपसे किया गया। कुछ अरसे कबल एक ईसाई पादरी मुसलमान हुआ। उसने बताया कि मेरे मुसलमान होने का ये सबब हुआ कि मैंने एक मुसलमान आलिम से मनाजरे के दौरान सवाल किया कि जो कुरान मजीद आज मौजूद है वो नुस्खा उस्मानी है, यानी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला उन्होंने उसे लिखवा कर पूरे आलम इस्लाम में भिजवाया। कुरान करीम का नुस्खा मुहम्मदिया कहाँ है? पादरी कहता है, बज़ाहिर ये सवाल बड़ा माकूल है कि मौजूदा कुरान उस्मानी मुसहफ मुहम्मदी मुसहफ नहीं, लेकिन हकीकत में इतना फजूल है कि मुझे सारी रात इस पर बेचैनी रही। बिलाखिर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सवाल ऐसा है जैसे कोई कहे कि ताज कंपनी जो नुस्खा छापती है ये तो नुस्खाए ताजिया है, नुस्खाए उस्मानिया नहीं। जब कोई शख्स कोई किताब लिखे और फिर उसे शाया करवा दे जो वही नहीं उसकी लिखी हुई तहरीर के मुताबिक हो, तो इस शाया शुदा किताब को उसी शख्स की तसनीफ कहा जाता है। ये कोई अक्लमंद नहीं कहता कि उसकी किताब सिर्फ वो है जो उसने खुद लिखी या लिखवाई। बिल्कुल यही सूरत हाल कुरान करीम की है। ईसाई हजरात के पास तो इंजील का असल जबान का पूरी दुनिया में एक भी अबरानी नुस्खा नहीं। ईसवी नुस्खे का उनसे क्या मुतालबा किया जाए? असल नुस्खा तो दूर की बात है, असल जबान का एक भी नुस्खा पूरी दुनिया में कहीं भी किसी म्यूजियम में भी मौजूद नहीं। मुसलमानों की किताब की असल जबान भी महफूज है, इब्तदाए इस्लाम के लिखे हुए नुस्खे भी महफूज हैं। ये नुस्खे आज के मौजूदा नुस्खों से और आज के और सारी दुनिया के कुरान करीम एक दूसरे से हर्फ ब हर्फ मिलते हैं। ये उसके असली और हकीकी होने की ऐसी दलील है कि उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जबकि दूसरी तरफ ईसाई हजरत के यहाँ सूरत हाल ये है कि खुद उसमें भी इख्तलाफ है कि इंजील में मौजूद चार मुख्तलिफ किताबों में से असल इंजील कौन सी है और वो किस जबान में नाजिल हुई थी। दुनिया भर में इंजील के तर्जुमे चल रहे हैं और हर तर्जुमा दूसरी जबान के तर्जुमे से काफी कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन कौन सा तर्जुमा असल के ज्यादा मुताबिक या उससे करीब है उसे चेक करने का कोई जरिया नहीं, क्योंकि असल नुस्खा तो दूर की बात है। असल जबान का एक भी नुस्खा पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी अजायब घर में भी मौजूद नहीं। आपको इंजील में मौजूद हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के मुतालिक पेशगोइयों की कॉपी भेजी जा रही है। इसकी मदद से आप अपनी दोस्त को इस्लाम की दावत भी दे सकती हैं और जो क्लास फेलोज आपसे कुरान करीम से मुतालिक मनफी सवालात करती हैं उनका जवाब भी इसी के जरिए मुमकिन है। गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम के तारुफ के लिए हजरत मौलाना मंजूर नोमानी साहब की किताब इस्लाम क्या है बहुत मुफीद है। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम की किताब बाइबल से कुरान तक और ईसाइयत क्या है नीज मारूफ मारूफ नौ मुस्लिम दानिश्वर अल्लामा असद लियो पोल्ड की रोड टू मक्का भी लाजवाब किताबें हैं। मौखरुज़ जिक्र का उर्दू तर्जुमा तूफान से साहिल तक के नाम से छप चुका है। जवाब नंबर 5, आप हरगिज उस डांसनुमा पीटी में हिस्सा ना लिया करें। यह असातिज़ा की नाफरमानी नहीं, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी का तकाजा है। अपने ईमान की हिफाजत इस्तकामत के साथ करें। रक्स और मौसीकी दोनों शैतानी काम हैं, ये शैतान के खास हथियार हैं। इनके जरिए से वो दिल में निफाक के बीज बोता और बेहयाई के कामों का शौक पैदा करवाता है। हमारे रहमानी मजहब में रक्स और मौसीकी की कतन कोई गुंजाइश नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो बच्चियों ने दफ बजा कर आपका इस्तकबाल किया। अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफ की इजाजत दी और ढोल को शैतान की आवाज करार दिया तो दफ और ढोल को एक जैसा कहने वाला कितनी बड़ी जहालत का शिकार है। अगर इंसान मजहब की बातों को अपनी नाकिस अकल से तरह तरह के सवालात करके जांचता रहेगा तो नबूवत की जरूरत क्या रह जाती है? जो बात हमारे मजहब में तय हो गई बस वो हर्फे आखिर है। किसी को ये हक नहीं कि मनमानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए पूछता फिरे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। मजहब दिल में भी होता है और सर से पांव तक हर उजू पर भी लागू होता है। वो और लोग होंगे जो अपने मजहब को दिल में छुपा कर रखते हैं और जिस्म पर जाहिर करने से शर्माते हैं। उन्होंने अपना मजहब बदल दिया है और अब हमको भी उस बदनसीबी में मुब्तला करना चाहते हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इसको भी और हम सबको भी नेक हिदायत पर नसीब फरमाए। ईमान और इस्लाम की मोहब्बत और उस पर अमल, इसकी तबलीग का शौक हमारे रगों पे में रेशे रेशे में उतार दे। आमीन। मसलहत या गैरत, क्लोनिंग या शुआएं, 100 साल बाद। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मैं गुज़श्ता 7 साढ़े 7 साल से आपका कारी हूँ। आपके मज़ामीन, अक्सा की पुकार, बोलते नक्शे वगैरह मेरे लिए बायसे तवज्जा रहे हैं। आज मैं चंद नुकात पर अपने अशकालात की वजाहत आपसे चाहता हूँ। सवाल नंबर एक, आपकी किताब आलमी यहूदी तंजीमे में सफ़ा 53 पर लिखा है, सो जिद्दत पसंद पूरी दिल सोजी और मुकम्मल खैर ख्वाही से मुसलमान नौजवानों को तहम्मुल और बर्दाश्त और वसत नजरी और रवादारी की तलकीन करते नजर आते हैं। वो मुसलमानों को हिकमत अमली सीखने और सुलह हुदैबिया वाला नरम रवैया अपनाने की तरबियत देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान दुश्मन के जेर नगी इलाके मक्का मुकर्रमा में जा रहे थे, जबकि दौरे हाजिर में दुश्मन चढ़ाई करके मुस्लिम ममालिक को रौंद में आ निकला है। जनाब मुफ्ती साहब, आज से 7 साल 3 माह कबल इज्जत मआब जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने भी कुफ्र व इस्लाम के मार्के में सुलह हुदैबिया का हवाला दिया था और कहा था, इस मौके पर जरूरत हिकमत से काम लेने की है। हुदैबिया के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत जज्बाती हो रहे थे। ये बात भी सही है कि मुसलमान उस वक्त कुफार से तादाद में कम थे। ये भी सही है कि वो लड़ने के इरादे से नहीं बल्कि उम्रे की गर्ज से मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचे थे। उनके पास हथियार भी नाकाफी थे। वो अपने बेस कैंप से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर थे। उनकी कोई दिफाई लाइन न थी। इनको कुमक पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन में से था। वो मुश्किल हालात में पलटकर किसी दिफाई हिसार में पनाह भी नहीं ले सकते थे। मगर मैं समझता हूँ कि सुलह हुदैबिया का तذکرہ बैत रिजवान के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये वो बैत है जिसके ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है। इस बैत से तमाम दावों, तज्जियों और अंदेशों से कलई उतर जाती है। और जो ये कहते हैं कि चूंकि हालात मुसलमानों के मवाफिक ना थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने वक्त और हालात देखते हुए हिकमत से काम लेते हुए कुफार के तमाम मुतालबे मानते हुए सुलह कर ली। मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया इसलिए नहीं की कि हालात मुसलमानों के लिए साजगार ना थे और वक्त को टालने के लिए मजबूरन उन्हें सुलह करनी पड़ी। सुलह हुदैबिया महज अल्लाह की वही की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हुई, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे मुसलमानों के लिए फतह मुबीन करार दिया। बाकी ये सवाल कि सूरह फतह तो सुलह हुदैबिया के बाद नासिल हुई। वही मतलू की तरह वही गैर मतलू पर ईमान रखने वालों के लिए इस तरह के एतराजात कुछ माने नहीं रखते। हजरत परवेज मुशर्रफ की हिकमत कतन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत को सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही की रोशनी में वीटो किया। मुफ्ती साहब की किताब से लिए गए मंदरजा बाला इक्तबास से भी मुझे ये महसूस होता है कि जैसे सुलह हुदैबिया इसलिए हुई क्योंकि मुसलमान दुश्मन के जेरे नगी इलाके में जा रहे थे। मौदबाना अर्ज है कि मेरी इसलाह फरमा दीजिए और दिल के तरद्दुद को दूर कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको जजाय खैर दे। मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आइंदा भी किसी सुलह से मुसलमानों की फतेह मुबीन और इस्लाम का गलबा यकीनी हो तो फबीहा हमें बिला वजह खून बहाने का शौक नहीं है, अपना भी और दुश्मनों का भी। वरना हमारा रास्ता तो बदरो हुनैन, गजवाए बनु नजीर, गजवाए बनु कीनुका, बनु कुरैजा व खैबर से होता हुआ कादसिया, निहावंद और यरमूक से गुजरता है। हमारा रास्ता सोमनाथ से गुजरता है, ना कि पलटन मैदान से। नंबर दो, मुफ्ती के सिलसिला दज्जालियत से मुतालिक जर्मे मोमिन 19 ता 26 जिलहज 1429 हिजरी में मजबून छपा है, दज्जाल कहाँ है? इसके इब्तदाई पैराग्राफ में लिखा है, दज्जाल कुछ मौके पर कुछ अरसे के लिए इस काबिल होगा कि लोगों को हलाक और फिर जिंदा कर सके, और ये इस मामूली इल्म की बदौलत होगा। वो इसे किसी तरह करेगा, गालबन क्लोनिंग के जरिए। मेरी नाकिस राय में ये अंदाजा सही महसूस नहीं होता। क्लोनिंग तो आज कल ही काफी शोहरत पा चुकी है। दज्जाल कुछ मौके पर नहीं बल्कि एक अजीम इंसान को कत्ल करेगा, फिर उसे दोबारा जिंदा करेगा, नाउजुबिल्ला। फिर जब दोबारा उसी शख्स को मारना चाहेगा तो उस पर कादिर ना होगा। वो जो मुसलमान को दोबारा जिंदा करेगा तो कुछ इस अंदाज से होगा कि पहले ये काम किसी ने किया होगा, इसी को तो मिसाल बनाकर वो खुदाई का दावा करेगा। दूसरी बात यह है कि क्लोनिंग के जरिए एक जानदार खलिया लेकर जो जानदार पैदा किया जाता है वो हूबहू पहले की हम शक्ल होता है, लेकिन ये वही पहला जानदार नहीं होता बल्कि एक बच्चे की नकल और शक्ल में होता है, जो वक्त के साथ परवान चढ़ेगा और बड़ा होकर हूबहू अपने सबका जानदार की नकल होगा, जबकि दज्जाल जिस शख्स को मारेगा उसी को जिंदा करेगा। वो बच्चा नहीं होगा, उसी उम्र का वही शख्स होगा और बबांगे दोहल कहेगा कि अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का यकीन और भी पुख्ता हो गया, अपने इस ख्याल में इसलाह का तालिब हूँ। सवाल नंबर 3। इसी मजमून के आखिर में एक हदीस नकल की गई है जिसमें हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला के सफर के बारे में बताया गया है कि एक जजीरे पर उनकी मुलाकात जसासा और दज्जाल से हुई। दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से 100 साल बाद हम में से कोई नहीं होगा। हदीस के सही अल्फाज मुझे याद नहीं, मफहूम तकरीबन यही है, यानी उस वक्त रूए जमीन पर जो इंसान बसते थे 100 साल बाद यानी 110 हिजरी तक इनमें सबका इंतकाल हो गया। इसी बिना पर उल्मा का एक बड़ा तबका हजरत खिजर अलैहि सलाम की हयात दुनिया की नफी करता है कि अगर उस वक्त भी हजरत खिजर अलैहि सलाम जिंदा थे तो भी 100 साल बाद वो वफात पा गए और अब जिंदा नहीं है। इन दो अहादीस का जाहिरी तारुज तरद्दुद में डालता है। आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि मुनासिब तबदीक फरमा कर जाहिरी अशकाल को दूर कर लीजिए। दूसरी बात ये कि दज्जाल यकीनन एक इंसान ही है, जिन नहीं है, क्योंकि जिनों में सबसे बड़ा शैतान बड़ा शदीद शैतान है। उसमें भी ये ताकत नहीं कि जबरदस्ती किसी को गुनाह पर आमादा कर ले। दज्जाल इंतहाई जहीन और साइंसी उलूम में महारत और कमाल रखता होगा। वो अगर किसी गुमनाम जजीरे पर कैद है तो वो ये उलूम कहाँ से सीखेगा? नीज इस दुनिया पर रहते हुए क्या उसकी उम्र में इजाफा होगा? अब तक तो वो हजारों साल का बूढ़ा हो चुका होगा। सवाल नंबर 4। गुज़िश्ता कुछ मजामीन में हजरत मेहदी के जहूर की अलामत ये बताई थी कि इसी साल माह रमजान में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण एक ही महीने में होंगे। 1424 हिजरी में एक ऐसा वाकया भी हो चुका है, मगर अहम बात यह है कि इस साल चांद ग्रहण दरमियान महीना नहीं बल्कि शुरू महीने में होगा। ये बात तो एक स्कूल का तालिबे इल्म भी जानता है कि सूरज ग्रहण हमेशा कमरी महीने की आखिरी तारीखों 28 या 29 तारीख को शुरू होता है, जबकि चांद ग्रहण हमेशा वस्त महीना यानी 13 या 14 या 15 तारीख को होता है, और उसकी वजह चांद और जमीन की मखसूस हरकत है। पहली तारीख को चांद ग्रहण होना खिलाफ आदत होगा। मुझे खिलाफ आदत किसी वाकये का होने से इनकार नहीं है, कयामत के करीब बेशुमार खिलाफ आदत वाकयात होंगे, मगर जो बात मेरे जहन में है वो है कि पहली तारीख के चांद ग्रहण का मुशाहिदा कैसे किया जाएगा। पहली तारीख का चांद निहायत बारीक होता है, बाज़ औक़ात नजर भी नहीं आता, बहुत कम वक्त के लिए उफक पर रहता है। ऐसे में अगर इस पर गहन भी हो रहा हो तो आम आदमी के लिए उसका मुशाहिदा तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा ही महसूस होगा कि किसी वजह से आज चांद नजर नहीं आया, कि किसी का जहन मां सिवाय साइंसदानों के ग्रहण की तरफ नहीं जाएगा, लिहाजा ये खुली हुई निशानी महसूस नहीं होती। नीज ये चांद ग्रहण हर साल पहले से, जैसे अभी से ये बता दिया गया है कि 2009 में 2 सूरज ग्रहण और 4 चांद ग्रहण होंगे, इन्हीं में से होगा या ये बिल्कुल हिसाब से हटकर होगा। उम्मीद करता हूँ आप जवाब देकर मेरे अशकालात को दूर करेंगे। वसलाम, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, हैदराबाद। जवाब, याद आवरी रहनुमाई और सलाह इसलाह का अजहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए और आपको अपनी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। जवाब नंबर एक, इस जुमले में जिद्दत पसंदों से मुराद वो स्कॉलर थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब को वो तकरीर तैयार करके दी थी, जिसमें उन्होंने मशहूर जमाना इस फासिद तावील से काम लेकर अपनी नाजायज अफाल को सनद जवाज फराहम करने की कोशिश की थी। आपकी बात बिल्कुल बजा और दुरुस्त है। बंदे के इस जुमले का मकसद हरगिज नाम नहाद हिकमत अमली और बुजदिली बनाम मसलहत कोशी को किसी भी दर्जे में हिमायत ना था, बल्कि वही था जिसकी तफसील आपने की और इजमाल में बयान किया। लेकिन मुबहिम जुमले की शक्ल में साफ बात यह है कि सुलह हुदैबिया इसलिए हुई थी कि मुसलमानों के सिपह सालार आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाम के लिए 1400 मुसलमानों से मौत तक लड़ने का अहद दिया था। इस गैरत और ईमानी अख़ुत के बेमिसाल मुजाहरे ने कुफार को मजबूर किया कि वो आकर सुलह की बातचीत करें। आज हमने ईमानी गैरत को एक तरफ रखकर सुलह हुदैबिया की ही ऐसी तशरीह शुरू कर दी है जो हमारी बुजदिली और बेईमानी को सनद फराहम कर सके। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी। किताब के अगले एडिशन में इस तहरीर के अबहाम को दूर कर दिया जाएगा। जजाकुमुल्लाहु ताला। जवाब नंबर दो, इस जुमले को यूं कर देना चाहिए, गालिबन क्लोनिंग की किसी तरक्की याफ्ता शक्ल के जरिए। और वाकया ये है कि ये सब कुछ दज्जाल की ताकत की साइंसी तौजीह है, क्योंकि इस दारुल असबाब में उसको जो कुव्वत मिलेगी वो बिल्कुल माफुकुल फितरत ना होगी, बल्कि फितरी कुव्वतों पर गैर मामूली तहरीक के जरिए होगी, जिसे आम लोग करिश्माए कुदरत समझकर यहूदी साइंसदानों के इस शोबदेबाज को खुदा मान लेंगे। जैसा कि आपने लिखा है, दज्जाल साइंसी उलूम में कमाल महारत रखता है। अगले मजामीन में राकिम ये बात कह चुका है कि बरमूदा ट्रायंगल में कार फरमा शुआओं को यहूदी साइंसदानों ने किसी हद तक महफूज कर लिया है। मुकम्मल तौर पर महफूज करने और हसब मंशा इस्तेमाल करने की कोशिशें जारी हैं। इन शुआओं के जरिए मुहैयरुल उकूल काम पलक झपकने में किए जा सकते हैं, और उन करीब दुनिया दज्जाल के जहूर से कबल ही झूठी खुदाई के ये तमाम तमाशे देखेगी। जवाब नंबर तीन, इन अहादीस में तहारुज नहीं है कि ये आम बनी नौ इंसान की बात हो रही है जो इस वक्त जिंदा है। उसके बाद भी अमूमन 100 साल बाद जमीन पर वो इंसान नहीं रहते जो आज जिंदा हैं, उनकी जगह नई मखलूक ले लेती है। हजरत खिसर अलैहि सलाम जैसा पैकरे खैर, दज्जाल अलैहि लानत जैसा सरापा शर से इससे मुस्तस्ना है। दज्जाल गुमनाम जजीरे में बंद है, उसे ये उलूम सीखने की जरूरत नहीं। कुछ तो उसकी सलाहियतें बेमिसाल होंगी, अगरचा सिर्फ शर में ही इस्तेमाल होंगी, और कुछ यहूदी साइंसदान अपनी तमाम इजादात उसके कदमों में ला डालेंगे ताकि वो इनकी आलमी हुकूमत कायम कर सके। जहां तक उसकी उम्र की बात है, या तो जमान और मौसम उस पर नजरअंदाज नहीं, या फिर अल्लाह ताला ने इस फितने को बनाया ही ऐसा है कि मुद्दतें गुजरने के बावजूद वो शर के कामों को नुक्ता उरूज तक पहुंचाने के लिए ऐसा ही चौकसो बेदार होगा जैसे कि कोई जवानुल उम्र होगा। जवाब नंबर चार, ये हिसाब से बिल्कुल हट कर होगा। उसके वक्त को साइंसदान पहले से मुतय्यन नहीं कर सकते। गालिबन बारीक होने के बावजूद इसका आम और खुला एहसास ही इसकी इनफरादियत होगा। वल्ला आलम बिमा हुआ कायन फी कायनात। जंगे हिंद की तरकीब, जिहाद की अमली तदाबीर, अमीर की तलाश। मोहतरम मुफ्ती अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फलस्तीन और अक्सा के मौजू पर आपके मजामीन एक अरसे से मेरे जेरे मुताला रहे हैं। मैं ये सब कुछ पढ़ता था और सोचता था कि अक्सा का मरसिया तो सुनाया जा रहा है, मगर मुझ जैसा आमी इस सिलसिले में क्या कर सकता है। इस सिलसिले में कोई गाइडलाइन नहीं थी। आपकी किताब दज्जाल के शाया होने के बाद ये कमी दूर हो गई। इसमें मेरे जैसे शख्स के करने के लिए बहुत मवाद है। अल्लाह ताला आपको इसकी जजाय खैर दे और आप आइंदा भी हमारी रहनुमाई का काम सर अंजाम देते रहें। सवाल नंबर एक, मैं सोचता हूँ कि अक्सा के रास्ते में हिंद पड़ता है। फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस में आखिरी बड़े मार्के से पहले रिवायत के मुताबिक एक बड़ी और फैसला कुन हिंद में होगी, जिसमें मुसलमान हिंदुस्तान को फतह करेंगे, इस्लाम को गलबा हासिल होगा। मुसलमान हिंदुस्तान के बादशाहों को बांधकर जब वापस पलटेंगे तो दरियाए उर्दुन के किनारे हजरत मेहंदी अपने जानेसार साथियों के हमरा यहूद और मौजूदा नसारा के साथ एक इंतहाई खौफनाक जंग में मसरूफ होंगे। ये लश्कर हजरत मेहंदी और उनके साथियों का मुआविन होगा। चूंकि हमारे खत्ते को इस जंग हिंद से बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अक्सा के साथ साथ जंग हिंद के मौजू पर भी लोगों को बेदार करने के मजामीन लिखे जाएं, क्योंकि बहरहाल जंग हिंद हर मजदून के मुकाबले में ज्यादा करीब है और हम इसमें तूवन या करहन मुलविस होंगे। लिहाजा इसकी तैयारी और कल्ब को गरमाने की जरूरत महसूस करता हूँ। सवाल नंबर दो, दूसरी बात ये कि अमली जिहाद की आम आदमी के लिए क्या सूरत है, हर आदमी क्या कर सकता है, इसका तायुन अमीर जमात करता है। इस वक्त हमारे लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह का अमीर कौन है? मैं जिहाद की तैयारी किस तरह से करूं? नमाज, तस्बीह हो, तहमीद, जिक्रुल्लाह और हराम से इज्तनाब के अलावा मैं क्या अमली इकदाम कर सकता हूँ? वाजह नहीं है। डॉक्टरों का जो वक्त गजा के लिए गया था, मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक कुछ ना कर सका। मिस्री हुकूमत ने उसे गजा जाने ही ना दिया। मेरे ख्याल में उस वक्त मुसलमानों में जिहाद की जो दाखिली रुकावट है, इसे दूर करना पहले मरहले में जरूरी है। मगर इसकी सूरत क्यों कर हो सकती है? सवाल नंबर तीन, रिवायात में है कि कुर्बे कयामत में मुसलमान और ईसाई मिलकर एक जंग लड़ेंगे, इसमें उन्हें कामयाबी होगी। मुसलमान कहेंगे कि ये कामयाबी हमारी वजह से हुई और ईसाई उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे। बाद में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी। मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, बस ऐसे ही जहन में ख्याल आता है कि शायद ये जंग कम्युनिज्म रूस के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जा चुकी है, जो दरहकीकत कुफर के खिलाफ जिहाद था। मगर अमेरिका ने 1.5-2 बरस की खामोशी के बाद जब देखा कि अफगान मुजाहिदीन तने तनहा कामयाबी से ये जंग लड़ रहे हैं, तो अपने मफाद की खातिर महज असलहे की सूरत में मदद की, जबकि उसका कोई फौजी लड़ने नहीं आया। बाद में ईसाई अब इस फतह का क्रेडिट लेते हैं कि हमने वियतनाम का बदला ले लिया। मैं अपनी इस राय की तसदीक चाहता हूँ। अगर वाकई रूस के खिलाफ जंग वही जंग है जिसका जिक्र रिवायात में है, तो फिर आखिरी मार्का मैदान सच चुका है। ऐसे में एक अमीर जमात और कायद का मुतलाशी हूँ जो मेरी और मुझ जैसे हजारों आम मुसलमानों की रहनुमाई करे और बताता रहे कि हर अगले मरहले में हमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी मौसर रहनुमाई फरमाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, हैदराबाद। जनाब डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब नंबर एक, जब जज्बाए जिहाद एक मोमिन के दिल को शौक इबादत से शौक शहादत से गरमाने लगता है, तो फिर शर्को गर्ब की तफरीक के बगैर उसे तो मैदान कारजार में ही चैन आता है, चाहे वो हिंद में सजे या हर मजदून में। दरअसल इस्लाम के आगाज में अरब से गैरतमंद मुजाहिदीन ने एक बेटी के पुकार पर आकर सिंध और हिंद की सरजमीन में इस्लाम फैलाया था। अब आखिरी दौर में अक्सा की पुकार पर हिंद से बुलंदबख्त और खुश नसीब जिहादी जमात लब्बैक कहते हुए अरब जाएगी और फलस्तीन के मारकतुल मारिक में अमीरुल मुजाहिदीन हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में हिस्सा लेगी। इसलिए आप फलस्तीन की बात करें या हिंद की, इराक की या कश्मीर की, इंशाअल्लाह सआदतमंद रूहें जब जिहाद फी सबीलिल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगी, तो उनके लिए ज़मानो मकान और जोग्राफिया और जबान का फर्क कभी आड़े नहीं आएगा। वैसे जिहाद हिंद के इब्तदाई तजुर्बाती मार्के जो सरजमीन कश्मीर पर लड़े जा रहे हैं, इन्हीं के हवाले से अहकर के मुतअद्दिद मज़ामीन अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू के हवाले से अपना हिस्सा डाल चुके हैं और जिहाद अफगान पर लिखे गए मज़ामीन से तो पूरी किताब तरतीब पा सकती है। जवाब नंबर दो, ये रुकावटें अब बढ़ती ही जाएंगी और साहिब अजीमत मुसलमानों का इम्तहान सख्त से सख्त तर होता चला जाएगा। बिलाखिर जो लोग सच्चे अकीदे, पाकीज़ा ज़िंदगी और जिहाद के रास्ते में आने वाली हर मुशक्क़त को बर्दाश्त करने पर डटे रहेंगे, उन्हें या उनकी नस्बी और रूहानी नस्ल को अल्लाह ताला इस लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाएगा, जिसके हाथों तीसरी आलमी जंग में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर खिलाफत इलाहिया कायम होगी। हमारे करने का काम यह है कि आलमी अमीर के जहूर से कबल मुकामी सालेह अमीर की तलाश के साथ साथ अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानते हुए अपनी ज़ाती जिम्मेदारियां अदा करेंगे और हम में से हर एक इज्तमाई कामों में अपना हिस्सा डाले। अपनी जबान से इस्लाह नफ्स और किताल फी सबीलिल्लाह की दावत को जिंदा रखे, उठते बैठते उनका तज़किरा करे, मुजाहिदीन के हक में जमीन हमवार करे, जो कुछ भी आमदनी हो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा फीसद राहे खुदा में देने की आदत डाले। अपने बच्चों और घर वालों से भी आदत डलवाए, मिलने जुलने वालों को भी इसकी तरकीब दे, जिहाद बिलमाल के फरीजे को जिंदा रखे ताकि चिराग की रोशनी भी जलती रहे और उसके लिए दरकार ईंधन भी कम ना हो, और जब जिहाद बिल नफ्स का मौका आए तो हम अपनी हकीर जान को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करते हुए किसी की मलामत की परवाह करें, ना किसी के दबाव या रोब से उसे छोड़ें। सवाल जवाब नंबर 3, रूस के खिलाफ जंग ये जंग ना थी, लेकिन आखिरी मार्के का मैदान दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे से थोड़ा आगे आर्मेगेडोन की वादी में सजना शुरू हो चुका है, इसलिए कि वही खुश नसीब जा सकेंगे जिन्होंने दिल दिल की गहराइयों से रात की तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर एक सच्चे और हिदायत याफ्ता कायद का साथ देने के लिए उसका साथ उसके साथ मिल जाने की दुआ की हो, और फिर अपनी जबान को हराम गोई से, अपने पेट को हराम खोरी से और अपने आप को हराम कारी से बचाए रखा हो। जिहाद की लगन रखने और कायद की तड़प रखने वालों की आहे सहर गाही की बदौलत अल्लाह ताला एक मुत्तबा सुन्नत बेदार मग और शुजाओ दिलेर कायद को उम्मत मुस्लिमा का निजात दहिंदा बनाकर भेजेंगे। जब तक कुदरत की तरफ से वो हिदायत याफ्ता अमीर नहीं आता, तब तक मुसलमानों को मुकामी मुत्तबा सुन्नत अमीर की क्यादत में मालो जान से जिहाद भी करते रहना चाहिए और अमूमी अमीर की तलाश भी जारी रखनी चाहिए। जिहाद किसी भी हाल में साकित नहीं है और अमीर के मिलने तक उसे छोड़ बैठने वालों को अमीर के जहूर के वक्त उसे जारी रखने की तौफीक ना मिलेगी तो वो दुनिया के फितनों में फंस चुके होंगे। 25 सवालात, एक तजवीज। मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे इस खत का मकसद अपने जहन में पाए जाने वाले कुछ अशकालात के मुतालिक रहनुमाई हासिल करना है, जबकि चंद एक बातों की वजाहत भी मतलूब है। इलावाजी मैं कुछ तजावीज भी दे रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ अशकालात और तजावीज गैर अहम हो, लेकिन जो मुनासिब हो तो दज्जाल नामी किताब के दूसरे एडिशन में अफादा यामा के लिए उन्हें शामिल किया जाए। सवाल नंबर 1, महदूदियात की पहली किस्त में आपने पहले पैराग्राफ में हजरत मेहदी के बारे में लिखा है, वो अभी पैदा नहीं हुए, आम इंसानों की तरह पैदा होंगे, क्या अहदीस में उनके वक्त पैदाइश की अलामात के मुतालिक भी कोई रिवायत मिलती है, या आपने किस बुनियाद पर लिखा है? बिलफर्ज अगर हम मान भी लें कि वो इसी सन हिजरी यानी 1429 हिजरी में ही पैदा हो गए हैं, तो फिर उनके जहूर का साल 1469 हिजरी बनता है, जो नصف सदी के बाद आता है, जबकि आपने लिखा है सदी के मुजद्दिद होने की रूह से नصف सदी से पहले उनका जहूर होगा। सवाल नंबर 2, आपने मजीद फरमाया है, मेहदी उनका नाम नहीं लकब है, बमाने हिदायत याफ्ता, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की जरूरत होगी और जो चीजें उसकी कामयाबी और बढ़तरी के लिए जरूरी होंगी, और पूरी रूए जमीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियां देने के बावजूद महज उन चंद चीजों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। उम्मत को कामयाबी और बढ़तरी के लिए किन चीजों और उमूर की जरूरत होगी? हजरत मेहंदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। क्या कुरान और हदीस में मुसलमान के हर मसले का हल मौजूद नहीं है? और क्या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के तमाम मुजाहिदीन इन तमाम सिफात से आरी हैं जिनकी बदौलत वो कामयाबी हासिल कर सकें, और वो इन कोताहियों की तलाफी और चंद सिफात को बासानी अपना कर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे और वो कुछ चंद सालों में कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बनना पड़ रहा होगा। क्या इस तहरीर और इस हदीस शरीफ में तजाद नहीं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से एक जमात कयामत तक मुसलसल हक पर किताल किताल करती रहेगी और गालिब रहेगी। सवाल नंबर 3, हजरत मेहंदी को हरमैन में तलाश करने वाले 7 उलमा में से अलहदा अलहदा हर एक के हाथ पर 310 से कुछ अफराद ने बैत कर रखी होगी, यह सब 7 उलमा के हाथ पर मजमुई तौर पर 310 से कुछ ऊपर अफराद ने बैत कर रखी होगी क्योंकि आपने एक जगह तहरीर फरमाया है। हत्ता कि वो 7 उलमा जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों मुमकिन तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, शाम, मराकश, अलजजायर, सूडान से हजरत मेहंदी की तलाश में आए होंगे और हर एक के हाथ पर 310 से कुछ ऊपर अफराद ने बैत कर रखी होगी। जबकि आगे एक पैराग्राफ में लिखा है, इसी तरह ये 7 उलमा भी उनकी जुस्तजू में बेचैन और बेताब होंगे। उनके साथ मौजूद 300 के लगभग अफराद भी दुनिया भर से उनकी तलाश में हरमैन पहुंच चुके होंगे। सवाल नंबर 4, 1940 में एक अमरीकी साइंसदान निकोला टेस्ला ने एक ईजाद किया, ये ईजाद क्या है? सवाल नंबर 5, जब हजरत मेहंदी के यूरोपीय ईसाइयों से जंग होगी, इसमें हजरत के साथ 12,000 के करीब मुजाहिद होंगे, क्या खुरासान के लश्कर के अफराद भी इस लश्कर में शामिल होंगे या उनकी तादाद अलहदा होगी? सवाल नंबर 6, मुतहदा यूरोपी फौज का 9,60,000 का लश्कर यूरोप के दरवाजे कुस्तनतुनिया इस्तंबुल से गुजरकर शाम की सरजमीन पर आया होगा। इस फकरे में शाम की मौजूदा जुग्राफियाई हदूद बयान की गई हैं या वो हदूद जो इस्लाम के इब्तदाई जमाने में थी? अगर वही थी तो इस जमाने के मुल्क शाम में कौन कौन से ममालिक या इलाके शामिल थे? सवाल नंबर 7, जब तुम देखो कि खुरासान की जानिब से सियाह झंडे निकल आए तो इस लश्कर में शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें उसके लिए बर्फ पर घसीट कर क्रॉलिंग करके क्यों न जाना पड़े, क्योंकि इस लश्कर में अल्लाह के आखिरी खलीफा मेहंदी होंगे। इस हदीस शरीफ में सियाह झंडों का जो जिक्र किया गया है वो हकीकतन सियाह होंगे या मुहावरतन, यानी क्या इसमें सियाह झंडों से मुराद काली पगड़ियों को लिया गया है या हकीकतन के सियाह झंडे? सवाल नंबर 8, आपने तहरीर फरमाया है कि जहूर मेहंदी के 8वें साल दज्जाल जाहिर होगा और इसी साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुजूल फरमाएंगे। मशहूर हदीस शरीफ के मुताबिक जब दज्जाल निकलेगा तो जमीन पर 40 दिन रहेगा, पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर और तीसरा हफ्ते के बराबर होगा, बकिया 37 दिन आम दिनों के बराबर होंगे। पूछना यह है कि क्या अहदीस में इसकी तायुन मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुरूज दज्जाल के पहले दिन नाजिल होंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन या बकिया 37 दिनों में से किसी दिन? सवाल नंबर 9, सूरज का अपने गुरूब के मुकाम से तुलू होना दज्जाल का जहूर और जमीन के जानवर का नमूदार होना, क्या ये तीनों वाकयात हदीस शरीफ में बयान करता तरदीब के मुताबिक नमूदार होंगे या जहूर दज्जाल से पहले सूरज अपने गुरूब के मुकाम से तुलू होगा या जहूर दज्जाल से पहले जमीन का जानवर नमूदार होगा? सवाल नंबर 10, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम से पूछा, क्या तुमने किसी ऐसे शहर के मुतालिक सुना है जिसके एक जानिब खुश्की और दूसरी जानिब समंदर है? सहाबा ने अर्ज की, जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बनी इसहाक के 70,000 अफराद इस शहर के लोगों से जिहाद ना कर लें। इस हदीस शरीफ में किस शहर का तذکرہ किया गया है? सवाल नंबर 11, जब तुम देखो कि खुरासान की जानिब से सियाह झंडे निकल आए तो इस लश्कर में शामिल हो जाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए बर्फ पर घसीट कर क्रॉलिंग करके क्यों ना जाना पड़े कि इस लश्कर में अल्लाह के आखिरी खलीफा मेहदी होंगे। इस जुमले से जाहिर होता है कि हजरत मेहदी का जहूर खुरासान के लश्कर में होगा, जबकि पहले आपने लिखा है कि हजरत मेहदी का जहूर बैतुल्ला शरीफ में होगा। इसका क्या मतलब है? क्या खुरासान की जानिब निकलने वाला लश्कर हजरत मेहंदी से मदीने में जाकर मिल जाएगा? यह लश्कर हिंदुओं और इर्तदादी फिक्र के शिकार नामनेहाद मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ हिंदुस्तान में ही जिहाद करेगा। सवाल नंबर 12। फजर की नमाज की पाबंदी नहीं हो रही, यह हजरत ईसा अलैहि सलाम के नुजूल का वक्त है या असर की जमात का एहतमाम नहीं? ये यहूदियों के कुल्ली खात्मे का वक्त है। अगर हम मौजूदा जमाने को देखें तो साफ जाहिर होता है कि फजर के नमाज में इतने नमाजी नहीं होते जितने की नमाज जुमा में होते हैं, और असर की जमात का अहतमाम भी नहीं हो रहा, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुफार की मेहनत रंग ला रही है और लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो क्या इससे ये समझना चाहिए कि नुज़ूले ईसा अलैहि सलाम से पहले पहले ही वो तमाम मुसलमान खत्म हो जाएंगे जो नमाज जैसे फर्ज की पाबंदी नहीं करते, या तमाम लोग नमाज की अदायगी का एहतमाम करने लगेंगे? सवाल नंबर 13। हजरत मेहदी के लश्कर के जिन तीन गिरोहों का जिक्र किया गया है, यानी भाग जाने वाला एक तिहाई लश्कर, शहीद होने वाला एक तिहाई लश्कर और फतह करने वाला एक तिहाई लश्कर, क्या इन तीन गिरोहों और हजरत के मुकाबले में आने वाले नामनिहाद मुसलमानों के अलावा भी मुसलमानों में से लोग होंगे जो गैर जानिबदार होंगे और जिन्होंने जंग में हिस्सा ही न लिया हो? इनके बारे में अहदीस में कोई वजाहत है कि उनका क्या हशर होगा? क्या उनका शुमार कुफार में होगा या वो मोमिनों में शुमार किए जाएंगे? सवाल नंबर 14। अहदीस से वाजह तौर पर मालूम होता है कि हजरत के जमाने में नामनिहाद मुसलमानों का एक तबका और होगा जो हजरत का साथ छोड़कर भागने वालों से भी ज्यादा बदबख्त होगा। वो इस्लाम का दावेदार होने के बावजूद हजरत के मुखालिफिन में से होगा और उसे अल्लाह ताला सारी दुनिया की आंखों के सामने दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। वो जिंदा जिस्मों के साथ जमीन में धंसा दिए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो आजकल के सबसे बड़े फितने यानी फिक्री इर्तदाद का शिकार हो चुके होंगे, और इनका सरबराह अब्दुल्ला सुफियानी नामी शख्स होगा। फिर आगे चलकर लिखते हैं, तो जनाबे मन, शराब को हलाल और सूद व जुए को जायज समझने वाले और सुन्नत नबवी को हकीर जानने वाले वो बदनसीब रोशन ख्याल लोग होंगे जो हजरत मेहंदी की तलवार का शिकार होंगे। यही फिक्री इर्तदाद का अंजाम है। ये लोग जानवरों की तरह ज़िबाह किए जाएंगे। आजकल खंजर से ज़िबाह की खबरें बहुत आती हैं। हजरत मेहंदी उनके सरदार सुफियान नामी शख्स को एक चट्टान पर बकरी की तरह ज़िबाह कर देंगे। इससे पहले एक जगह उनसे हासिल होने वाले माल गनीमत का भी तذکرہ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो लोग जिंदा जिस्मों के साथ जमीन में धंसा दिए जाएंगे तो मुसलमान उनके साथ बगैर जंग किए उनका माल माल गनीमत के तौर पर कैसे हासिल करेंगे, और वो लोग जानवरों के जैसे किस तरह ज़िबह किए जाएंगे? इन दोनों पैराग्राफ में तजाद क्यों है? सवाल नंबर 15। खुरासान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चंद इलाकों पर मुश्तमिल इलाके का नाम का जोग्राफियाई नाम है। इसमें पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके और अफगानिस्तान के कौन कौन से इलाके शामिल हैं? सवाल नंबर 16। हजरत दानियाल अलैहि सलाम की इस पेशनगोई के जिस हिस्से से हमें दिलचस्पी है वो ये है, शुमाली बादशाह की जानिब से फौजें तैयार की जाएंगी और मोहतरम किले को नापाक कर देंगे। फिर वो रोजाना की कुर्बानियों को छीन लेंगी और वहां नफरत की रियासत कायम करेंगी और अफवाज उसकी मदद करेंगी, और वो मोहकिम मुकद्दस को नापाक और दायमी कुर्बानी को मौकूफ करेंगे और उजड़ने वाली मकरूह चीज नस्ब करेंगे, और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को बरगश्ता कर देगा। लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। तौरात 846, दानियाल आयत नंबर 31-32। इन दो फिरकों से तो ये जाहिर हो रहा है कि इसराइली अफवाज मस्जिद अक्सा पर काबिज हो जाएंगी। क्या वाकई ऐसा होगा, और क्या हजरत मेहंदी अलैहि सलाम उसके बाद जाहिर होंगे, या पेशनगोई के इस हिस्से में भी यहूद नसारा ने तहरीफ कर दी है? सवाल नंबर 17। हदीस शरीफ में जो मावरा उन नहर से हारिस हर्रास किसान के चलने का तذکرہ किया गया है, तो ये इलाका कहाँ वाक़े है और इसमें कौन कौन से ममालिक आते हैं? क्या खुरासान को ही मावरा उन नहर कहते हैं या ये कोई और इलाका है? सवाल नंबर 18, हजरत मेहंदी के साथी वही होंगे जो आखिरी वक्त तक सारी दुनिया के मुखालफत और मुलामत के परवाह किए बगैर जिहाद की बाबरकत सुन्नत पर डटे रहेंगे। खुदारा एहसास कीजिए, क्या मौजूदा हालात के तनाजुर में जिहाद के साथ सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करना दुरुस्त है या इस पर फर्ज का इतलाक होना चाहिए? सवाल नंबर 19, नफरत की रियासत के 2300 साल बाद कयाम के मुतालिक जो पेशन गोई है, तो इन सालों का शुमार सिकंदर आजम के एशिया फतह करने से ही क्यों होता है और शारहीन उसकी क्या तौजीह बयान करते हैं? सवाल नंबर 20, मसीहियात की पहली किस्त मसीहा का इंतजार में है। दज्जाल हजरत मेहंदी और उनके साथ मौजूदा फातिहीन यूरोप और ईसाइयत मुजाहिदीन को सख्त मुशक्कत में डाल चुका होगा। यहाँ सिर्फ फातिहीन यूरोप और ईसाइयत ही क्यों? सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत मेहंदी खुरूज दज्जाल से पहले सिर्फ ईसाइयों से जंग करेंगे और यहूदियों के साथ उनका कोई मार्का नहीं होगा? क्या ईसाइयों के साथ होने वाली इन जंगों में यहूदी ईसाइयों का साथ नहीं देंगे? सवाल नंबर 21, मसीहियात की दूसरी किस्त बीच की कड़ी में लिखा है, वो आखिरी बार उर्दुन के इलाके में अफीक नामी घाटी पर अनमुदार होगा। मुसलमान और दज्जाल के लश्कर के दरमियान जंग होगी और जब मुसलमान नमाज फज्र के लिए उठेंगे तो हजरत ईसा अलैहि सलाम उनके सामने हो जाएंगे, नाजिल हो जाएंगे। जबकि मसीहियात की तीसरी किस्त कयामत कब आएगी में है कि अल्लाह ताला ठीक उस वक्त खास तौर पर मसीह इब्ने मरियम को भेजेगा कि जब दज्जाल एक नौजवान को मार कर जिंदा करने का तमाशा दिखा रहा होगा। जबकि इसी किस्त में है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम दमिश्क की जानिब मशरक में सफेद सफेद मीनारे याद मशक याद मश्क के मशरकी दरवाजे पर सफेद पुल के पास नाजिल होंगे। दज्जालियात की दूसरी किस्त दज्जाल का शख्सी खाका में है कि मुसलमान शाम के जबले दखान की तरफ भाग जाएंगे, वहां फजर की नमाज के वक्त ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम के मौजू नुजूल की इन रिवायात में इख्तलाफ क्यों है? सवाल नंबर 22, दज्जाल के साथ इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो ईरानी चादरें ओढ़े हुए होंगे। क्या ईरान में इतने बड़ी तादाद में यहूदी आबाद हैं? क्या ईरानी लोग यहूदियत कबूल कर लेंगे या फिर यहाँ 70,000 से अरबी मुहावरे के मुताबिक कसीर तादाद मुराद ली गई है? सवाल नंबर 23, 0 पॉइंट में आपने लिखा है, हदीस शरीफ में आता है, तीन वाकयात ऐसे नमूदार होंगे जो एक दूसरे के बाद रूनुमा होंगे और फिर फारिग वक्त वालों के पास भी वक्त ना रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये तीन बातें रूनुमा होंगी तो फिर किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसको फायदा ना देगा जिसने पहले ईमान कबूल ना किया था या उसने अपने ईमान से कोई खैर का काम नहीं किया था। नंबर 1, जब सूरज अपने गुरूब होने के मुकाम से तुलू होना शुरू कर देगा। 2, दज्जाल नमूदार होगा। 3, और जमीन का जानवर नमूदार होगा। सही मुस्लिम। इस हदीस शरीफ से जाहिर हो रहा है कि खुरूज दज्जाल के साथ ही तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, जबकि कारईन की नशिस्त में पेशन गोइयाँ हैकल सुलेमानी ईसाई हजरात का एक बेतुका सवाल के उनवान के तहत आपने वजाहत की है कि दज्जाल की हलाकत के बाद कुर्ब कयामत में जमीन की महवरी गर्दिश रुक जाएगी, फिर मुतजाद सिमत में घूमेगी, उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, यानी दज्जाल की हलाकत के बाद। इन दोनों बातों में तजाद क्यों है? सवाल नंबर 24, कुफर का जोर टूट रहा है, ना कुफरियात का गलबा खत्म हो रहा है, इसकी वजह महज किसी जरी और अहल कायद का ना होना है। क्या इस फिक्रे से कायदे मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद दामद बरकातहुम और तालिबान की जिहाद के लिए और मुहाजिर मुजाहिदीन के लिए दी गई अजीमुशान कुर्बानियों को जक नहीं पहुंच रही? क्या ये फिक्रा ये तासुर नहीं दे रहा कि मौजूदा जमाने में भी कोई अहले कायद मुजाहिदीन को मयसर नहीं? सवाल नंबर 25, इनको यकीन था कि अगर शिकस्त हुई तो सुल्तान उनको छोड़कर भागेगा नहीं, अगर फतह हुई तो उसके फवायद सुल्तान खुद हरगिज नहीं समेटेगा, बल्कि ये सारे समरात और नताइज इस्लाम की झोली में जाएंगे। अगर आज की क़यादत अपने कारकुनों को ये यकीन दिला दे तो खुदा की कसम काया पलटने में इतने ही दिन लगेंगे जितने कायद को अपनी बेनफसी और इस्लाम के लिए फनाइयत साबित करने में लगते हैं। इस फिक्रे से ये भी तासुर मिलता है कि दुनिया भर में जारी जिहादी तहरीकों और तालिबान की क्यादत अपने मकसद में मुखलिस नहीं है। हालांकि अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद दामत बरकातहुम ने सिर्फ एक मुहाजिर मुजाहिद को कुफ्फार के हवाले ना करने के लिए पूरी सल्तनत छोड़ दी। आपकी राय के मुताबिक मुजाहिदीन की नाकामी की वजह से उनकी क्यादत में खुलूस का फुकदान है, जबकि मेरी नाकिस राय के मुताबिक जब तक मुसलमान कुफार के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे, चाहे वो मुसलमान मुस्लिम मुमालिक के हुक्मरान हो या अवामुन्नास, उस वक्त तक फतह का तसव्वुर भी मुहाल है। मेरे अपने मुशाहिदे के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन को पहुंचने वाले नुकसान में से 90% से भी ज्यादा हिस्सा उन नाम निहाद पाकिस्तानी और अफगानी मुसलमानों का है जो तालिबान के खिलाफ जासूसी करते हैं, और शुमाली इत्तेहाद के वो मुसलमान फौजी जो नेटो अफवाज की हिफाजत करते हैं। अगर चाहिए कुफार नुमा मुसलमान बीच से हट जाएं और लश्कर कुफार की आनत ना करें, तो नेटो अफवाज अफगानिस्तान में एक हफ्ते के अंदर अंदर शिकस्त से दो चार होकर अपना बोरिया बिस्तर लपेटने पर मजबूर हो जाएंगी। पार्ट नंबर 7 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।